जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा को न मान, तेरा पंथ की आचार्य परंपरा को न मान, महामनस्वी महायशस्वी महातेजस्वी महाओजस्वी हम सभी के हृदय सम्राट आचार्य श्री महासुमन जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, उपासक बंधु कांतिला जी कावड़िया धर्मनगरी कानपुर के धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, आज हमारा ये रात्रिकालीन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हम लगातार पर्युषण आराधना में अपनी आत्मा का निरीक्षण परीक्षण और आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे पर्युषण का लक्ष्य है कि हम आत्मा के समीप रहें, आत्मा के अस्तित्व को जानें और किस तरीके से हमारी बद्ध आत्मा कर्मों से आवृत है उन कर्मों को जानें और कर्मों को जान करके उनको काटने का जो भगवान ने उपाय बताया है उस उपाय को हम जीवन में लागू करें और अपने कर्मों से हल्का हो करके आत्मा को उज्जवल करें और मोक्ष की ओर अग्रसर हो। तो आज हम अपने तेरा पंथ और आचार्य भिक्षु के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम आचार्य हमारे आराध्य उनका हम थोड़ा आपको परिचय दे रहे हैं कि आचार्य भिक्षु विक्रम संवत 1783 आषाढ़ शुक्ला 13 को कंटालिया में जन्मे थे। आपके पिताजी का नाम बल्लू जी था, माता जी का नाम दीपा जी, और जाति ओतवाल संकलेजा ही आपकी, और आपकी बचपन में शादी हो गई। दोनों शादी के बाद वैरागी हो गए, दोनों साथ में दीक्षा लेना चाहते थे लेकिन नियति का योग नहीं था, उनकी पत्नी पहले ही चल बसी। अब रघुनाथ जी जो स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य थे, उन्होंने दीपा जी को आकर के प्रेरणा दी कि तुम्हारा बेटा वैरागी है और इसको दीक्षा दिला दो। तो माँ दीपा ने कहा कि जब मेरे ये पुत्र रत्न हुआ उस वक्त मैंने सिंह का स्वप्न देखा था, ये बहुत बड़ा यशस्वी होगा, इसको मैं कैसे दीक्षा दूँ। तो रघुनाथ जी ने कहा कि यह धर्म क्रांति करेगा और ये धर्म प्रवर्तक के रूप में बहुत विख्यात होंगे, तो इसीलिए इनकी आप दीक्षा दे दो। तो माँ को समझाने के कारण माँ ने इनको दीक्षा की आज्ञा दे दी। विक्रम संवत 1808 को रघुनाथ जी के पास में वो दीक्षित हुए और लगभग 8 वर्ष तक उन्होंने रघुनाथ जी के जो है वो टोले में संप्रदाय के अंदर साधना की। तो उन्होंने इन 8 वर्षों के अंदर देखा कि इस संप्रदाय में बहुत शिथिलता है और ये अपने खुद के जो है वो स्थान बना के रहते हैं, स्थानक बना के रहते हैं, और उसके अलावा जो ये गोचरी पानी का जो है वो पूरा विधि पूर्वक नहीं करते हैं, और ये दीक्षा जो है प्रलोभन दे करके दीक्षा दिलाते हैं, और इस तरीके से बहुत सी जो शिथिलताएँ उन्होंने उस धर्मसंघ में देखी तो ये सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरा जो ये सन्यासी जीवन है ये आत्मा की उज्ज्वलता के लिए है, और अगर ये शिथिलता के अंदर रहूँगा तो किस तरीके से मेरी आत्मा का कल्याण होगा। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो 1816 विक्रम संवत में रघुनाथ जी से अलग हो गए, और उन्होंने अपने मन में चिंतन किया, आत्मारा कारज सारस्या मर पूरा देश्या, यानी हमने जो साधुपन लिया है वो आत्मा के कार्य के लिया है, आत्मा की उज्ज्वल करने के लिए, आत्मा के विकास के लिए लिया है, तो उसी का कार्य करेंगे। उसके बीच में रघुनाथ जी ने उनको बहुत समझाया और पीछे कई लोगों को भी लगाया, जहाँ जहाँ वो जाते उनका विरोध होता, उनको खाने को पूरा भोजन नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता, और जगह जगह जो है वो उनका विरोध होने लगा। अब देखिए कि 1816 की ये घटना है कि जब इन्होंने इस तरीके से अलग होकर के अपनी साधना को एक आचारवान साधना के रूप में करना प्रारंभ किया, तो ये गेरूलाल जी व्यास जो जोधपुर के थे इनके संपर्क में आए, और उन्होंने जो है वो अलग जगह जगह घूम करके जो है ये बताया कि भिखण जी जो है उन्होंने रघुनाथ जी से अलग हो गए हैं और वो शुद्ध साधुपन पाल रहे हैं, उनके सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं, और उन्होंने जगह जगह जो है लोगों की किया। तो एक बार की घटना है कि ये 13 जो है जो गेरूलाल जी आदि श्रावक जो है एक हाट के अंदर जो है सामायिक कर रहे थे, उधर फतेह सिंह जी जो दीवान थे जोधपुर स्टेट के वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उस हाट के अंदर इन श्रावकों को पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उन्होंने ये कहा कि भिखण जी जो है वो रघुनाथ जी से शिथिलता का अलग हो गए हैं और वो बहुत आचार नीति से चल रहे हैं, तो हम उनके सिद्धांतों पर चलने वाले जो श्रावक है वो यहाँ कमाई कर रहे हैं। तो उनके साथ के अंदर एक बार कवि था, तो उसने एक दोहा बना दिया आप आपरो गिलो करे, आप आपरो तंत सुन जो रे तेरा लोगों ये तेरा पंती तंत। उस वक्त में क्या था कि कुल मिला के भिक्षु स्वामी के साथ भी 13 साधु थे और 13 ये श्रावक थे। इस तरीके से उनकी श्रावकों की बात सुन करके और ये दोहा बना। तो भिक्षु स्वामी 1816 में जोधपुर से 40-50 किलोमीटर बिलाड़ा ये विराज रहे थे। उन्होंने इसको बहुत विधायक रूप से लिया और उनके वो बहुत मेधावी थे और वो भगवान महावीर को अपना आराध्य मानते थे। पट से जब ये उन्होंने समाचार सुने तो पट से नीचे उतर करके उन्होंने जो है भगवान को नमन किया, भगवान को वंदन किया और कहा कि हे प्रभु यह तेरा पंथ। और उस दिन से उन्होंने मन में स्वीकार कर लिया कि मेरे पंथ का नाम जो है तेरा पंथ होगा। तेरा पंथ का मतलब हे प्रभु ये तेरा पंथ है। साथ साथ में यह भी परिभाषा दी है कि 13 नियमों का पालन करने वाले, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति मिलाकर जो इन 13 नियमों का पालन करने वाले साधु हैं और जो अनुव्रतों का पालन करने वाले अनुव्रती हैं, ये श्रावक और साधु मिलकर के पंथ का नाम जो है तेरा पंथ जो है हुआ। अब आषाढ़ सुदी वहाँ से अब वो अलग हो गए थे। तो आषाढ़ सुदी पूनम विक्रम संवत 1817 को वो केलवा के अंदर उन्होंने जो दीक्षा वापस ग्रहण की और 5 साधु जो है उसमें और अलग निकल गए। और उस समय में केवल इनके साथ में 8 ही साधु थे। इन्होंने जो है वो अपनी भाव दीक्षा ग्रहण की और वहाँ से 1817 जो है आषाढ़ सुदी पूनम को जो है केलवा के अंदर हमारे 13 पंथ का जो है जन्म हुआ। और उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा कि रघुनाथ जी बहुत बड़े संप्रदाय के आचार्य थे, उनके अनुयायी भी बहुत थे और वो जो क्षेत्र था वो रघुनाथ जी का क्षेत्र था। तो जगह जगह पर उनको संघर्ष झेलने पड़े, जो पाली में वगैरह जहाँ जहाँ विचरण किया आसपास के अंदर। और दूसरा जो है इनको केलवा के अंदर जो जगह भी नहीं मिली, जो प्रथम चातुर्मास किया तो ये जो हमारी कोठड़ी है वो जो अब अंधेरी ओरी, तो वहाँ पे जो है जहाँ पर यक्ष वगैरह रहता था केलवा के अंदर, वहाँ पे उनको जगह मिली। इतनी छोटी जगह कि मुश्किल से उसके अंदर जो उनके साथ जो साधु कुल 5 थे वो मुश्किल से ही जो है बैठ पाते थे, इतनी जगह थी। उसके अंदर चातुर्मास किया और वहाँ पर जो है वो एक यक्ष भी रहता था। तो वो एक बार तो उनके साथ भारमल जी जो है वो उनके साथ थे। तो भारमल जी वो कुछ परखने के लिए अशुद्धि को बाहर गए तो वो देवता जो यक्ष था वो सर्प के रूप में उनके पाँव में आटे लगा दिए। तो भीखण जी ने आवाज़ लगाई, भारमल अभी इतनी देर क्या कर रहा है? तो भारमल जी ने कहा कि उसकी सर्प की जाति ने मेरे आटे लगा रखे हैं। तो वहाँ पर भीखण जी उपस्थित हुए, उन्होंने निवेदन किया कि आप जो भी हो प्रकट हो हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरीके से यहाँ अशुद्धि को न किया जाए और जो मेरे बैठने की जगह है उस पर आप तो बैठ सकते हैं, अन्य कोई नहीं बैठे हैं। तो इस तरीके से वो भिक्षु स्वामी वहाँ पर बैठा करते थे। यक्षदेव जो है उनका श्रद्धाशील बन गया और वो बराबर उनकी जो है वो सेवा भी करता था आदर्श रूप से। तो अब ये 1832 के अंदर जो हमारा मर्यादा महोत्सव होता है उसका पहला मर्यादा पत्र लिखा 1859 मार्च शुक्ला सप्तमी को अंतिम मर्यादा पत्र में लिखा उन्होंने और कुल 38,000 पद्यों की रचना की। और कुछ जो सिद्धांत है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, दान दया के हैं, पुण्य स्वतंत्र बंध के हैं, लौकिक लोकोत्तर के हैं। उन्होंने कुछ 46 साधुओं को और 56 साधुओं को शिक्षित किया और हमारे आराध्य जो है भादवा सुधी 13 विक्रम संवत 1860 सिरियाड़ी के अंदर जो है वो पुरानी हाट के अंदर विराज रहे थे। और वहाँ से जो है वो उन्होंने प्रयाण किया और इस तरीके से हमारा जो हमारे प्रभु और हमारे आराध्य हमारे प्रथम आचार्य जो है उनका देवलोक गमन हो गया। और उनके जो है वो बहुत से प्रसंग है जीवन के, तो मैं जो है समय की अर्थता के हिसाब से तेरा पंथ की हमारी क्या क्या मर्यादा है, क्या क्या मौलिकता है, वो आपको बताना चाहता हूँ कि आचार्य भिक्षु ने जो है वो मौलिकताएं बनाई कि सभी जो जितने भी साधु साध्वी हैं वो सब एक आचार्य की आज्ञा में रहे, मेरे बाद जो भी आचार्य होगा उसकी आज्ञा के अंदर वो चलेंगे और एक ही आचार्य की आज्ञा में रहेंगे, और विहार चातुर्मास है वो एक आचार्य की आज्ञा के अंदर करेंगे।
आपको पेपर का ये करना है तो नहीं करना है, सुनना है या पेपर का करना है? नहीं है वही, आप आगे आ जाए, नहीं आगे आगे ही कर लो ना, आप थोड़ा तो ध्यान में रहे ना, आपका बातचीत भी हो जाए।
ऐसा है, ऐसा है कि बैठो इसका समझाता हूँ, मतलब ये है ये 84 लाख जीवा योनि है ना, ये फिक्स है, ये 84 लाख घटती बढ़ती नहीं है। योनि का अर्थ क्या है, आपको जो आपको कंफ्यूजन है ना, योनि का मतलब उत्पत्ति स्थल, जिस स्थल के अंदर जीव जन्म लेता है वह उसकी योनि कहलाती है, और उसके उसके अंदर तो जीव अनंत होते हैं, असंख्य और अनंत जीव लेते हैं, लेकिन उत्पत्ति स्थान कुल ये 84 लाख उत्पत्ति स्थान है जहाँ जीव जन्म लेते हैं। तो जैसे 7 लाख पृथ्वी काय, मतलब पृथ्वी काय की ऐसी जगह कि जैसे कि मुरड़, माटी, खरड़, गेरू, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, माणस, मोती, जो भी खदान से निकला है ना, ये 7 लाख तरह के स्थान जहाँ पर पृथ्वी काय के जीवों का जन्म होता है वो वहाँ पर पैदा होते हैं। ये संख्या जो है ना वो संख्या घटती बढ़ती है, योनि स्थल है ना, योनि स्थल जो है ना वो नहीं घटता बढ़ता है, ठीक है ना, वो संख्या उनके जीवों की संख्या घटती है, कभी पृथ्वी काल में कम हो जाते हैं, लेकिन ये 84 लाख जीवा योनि और मोक्ष, ठीक है ना, उन सबको जोड़ दो तो वो जीवों की टोटल संख्या वो अपन को मालूम नहीं है, वो तो तीर्थंकर जानते हैं, केवली जानते हैं टोटल जीवों, क्योंकि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, जीव तो अनादि अनंत काल से इस चक्कर 84 लाख का ये चक्कर है, इस चक्कर के अंदर घूम रहे हैं। जीवों की संख्या भी फिक्स है, वो क्या है कि असंख्य है, अनंत है, कुछ भी मानिए वो जीवों की संख्या, परंतु आपका जो प्रश्न है ना उत्पत्ति स्थान से, जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, ये सारे उत्पत्ति स्थान है जहाँ जन्म लेते, हाँ ये 7 लाख फिक्स है, ये सारी टोटल 84 लाख योनियां जहाँ की जीव जन्म लेते हैं ये फिक्स है, ये भगवान के द्वारा बताए हुए हैं और हर तीर्थंकर ने ही बताया है, इसीलिए फिक्स है।
आपके दिमाग में अभी तक क्लियर नहीं हुआ,
इसके अंदर जन्म लेने वाले है ना, ऐसा है योनि है ना, जैसे माँ के गर्भ से जो है ना पुत्र पैदा होता है, आप मतलब कोई भी पैदा होता बच्चा तो माँ की वो योनि है, तो उत्पत्ति स्थान कहाँ से पैदा होते हैं उस उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं, जिस जगह जीव पैदा होते हैं उसको योनि कहते हैं, वो ये 7 लाख तरह के उत्पत्ति स्थान है वहां से, लेकिन उसमें जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है,
जीवों की संख्या अधिक हो सकती है, ये योनि है वो पर्टिकुलर,
जीवों की संख्या घट बढ़ सकती है, योनि की संख्या फिक्स है, योनि योनि की संख्या फिक्स है, उत्पत्ति स्थान की संख्या फिक्स है, ठीक है ना। और वैसे देखिए जैन धर्म का सिद्धांत है कि हम टोटल में देखें तो उत्पन्न कुछ नहीं होता है, न तो परमाणु पुद्गल उत्पन्न होता है, न जीव उत्पन्न होता है, न अजीव उत्पन्न होता है, रूपांतरण होता है, वो बदलते रहते हैं एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे में, इस तरीके से। तो ये आत्माएं भी 84 लाख जून में घूमती रहती है, नर गति, तीरेन्द्र गति, मनुष्य गति, और 7 लाख जो उत्पत्ति स्थान में कभी किसी में जन्मी कर्मों के अनुसार, और सब जन्मते हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार में, और मोक्ष में भी फिर बाद में चली जाती है। तो इसीलिए जैन धर्म कहता है कि टोटल मिलाकर के आत्माओं की संख्या अनादि अनंत काल से एक ही संख्या चल रही है, आत्मा की नहीं। जो हमारा जीव है जिसका छोटा छोटा पुद्गल है, न तो एक पुद्गल घटता है न बढ़ता है, उसका रूपांतरण होता है, सोने से मिट्टी हो जाता है, मिट्टी से जो है वो दूसरा पदार्थ बन जाता है, इस तरीके से वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। और कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछो।
तो जानकारी दो,
नहीं नहीं पूछना ही चाहिए ना, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए,
नहीं ऐसा है जानकारी,
कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिमाग में, पूछना
चाहिए,
हाँ पूछना चाहिए, ठीक है। ऐसा है उदय, उदय जो है ना, उदय का जो है ना, कल अपन ने बताया था कि स्थिति, स्थिति का मतलब ये है ना कि वो जब हम कर्म का बंधन करते हैं तो हमारी आत्मा के साथ में वो जब तक उसका समय पक नहीं जाता है तब तक उसको कहते हैं अबाधा काल, और जब पकता है उसको कहते हैं बाधा काल। पकने पकते ही उदय में आता है, और उदय में आते उसका अनुभाग, जिस अनुभाग से हमने कर्म बांधा था, जिस रस से, जिस इंटेंसिटी से जो है हमने वो कर्म बांधा था, जिस ग्रेविटी से हमने कर्म बांधा था, उसी अनुभाग से, उसी रस से फिर वो उदय में आता है। अब ये है कि पाप और पुण्य जो है ना एक साथ तो कैसे होंगे, एक ही होगा एक समय में, हाँ। तो ऐसा है कि वो पुण्य जो है ना उसका उदय समाप्त हो गया, फिर पाप का उदय चालू हुआ, ये क्रमशः होंगे, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, या तो पाप होगा और फिर पुण्य होगा। और कर्म भी क्या है कि ये हमारे बांधते रहते हैं, डेबिट क्रेडिट आत्मा के साथ में, जो अपने 8 कर्मों का वर्गीकरण एक आयुष्य को छोड़ करके साथ है ना, ये क्या है कभी जमा होते हैं, कभी छूटते हैं, कभी निकलते हैं, निर्जरा होती है, कभी बंद होता है, ये चलता, ये घटता बढ़ता रहता है। उसके परमाणु है ना, 4 भाग अपन ने बनाए थे, इसके परमाणु है घटते बढ़ते रहते हैं, और स्थिति भी जो क्या है कि एक बार के अंदर बंदी उसकी स्थिति जो है दूसरे बार से दूसरी स्थिति होती है, तो इस तरीके से वो चलता रह, ये क्रम चलता रहता है ये सारा। और कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न? तो हम जो बात कर रहे थे आज, हम 13 पंथ की मर्यादा की बात कर रहे थे, 13 पंथ के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। पहले हमने आचार्य भिक्षु का जो है वो परिचय संक्षेप रूप के अंदर दिया, अब जो हमारे 13 पंथ की जो मूल विशेषता है कि सभी साधु साधवियां एक आचार्य की आज्ञा में चले, और विहार चातुर्मास है एक आचार्य की आज्ञा में करे, शेष काल एक आचार्य की आज्ञा में रहे, और जो उसके पोती पाना जो कुछ भी है ना वो जो है वो गण की संपत्ति है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दे और वो लेके जा रहे, और सब कुछ जो होना है सब आचार्य की आज्ञा से होना है, शेष काल मूल ये है। अच्छा, और उसके बाद के अंदर जो अपने सिद्धांतों की बात हम करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी सिद्धांत की बात क्या है कि आचार्य भिक्षु ने जो पुण्य बंध की बात कही है वो बहुत समझने की है, बहुत सटीक बात है। हमारी जो मान्यता है इतनी सुंदर मान्यता है, दूसरों की डिफरेंस हो सकती है लेकिन उस मान्यता को हम दिल में बिठा देते हैं। और देखिए गुरु दानना जब हम करते हैं तो देव, गुरु और धर्म, अब देखिए अरियंत तो देव सबके हैं, चारों संप्रदाय के अरियंत है, ठीक है ना, और धर्म सबका जैन धर्म है,
जो भगवान महावीर के अनुयायी हैं या ऋषभ को 24 तीर्थंकरों को सब मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं, मूर्ति पूजक भी मानते हैं, तो धर्म तो और पांच महाव्रत वो भी मानते हैं, अपन भी मानते हैं, तो धर्म और देव तो हो गए एक। अब गुरु का इसके बारे में लंबे लंबे समय तक जो है गुरुदेव के सानिध्य में विचार विमर्श चला और उसके अंदर कई प्रश्न आए कि कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो ये गुरुदेव ने तय किया कि जिस गुरु की आप गुरु धारणा करते हो, जैसे हमने माँ श्रमण जी की या आचार्य तुलसी की गुरु धारणा, जो भी तेरा पंथ की गुरु धारणा की, तो हमारा तेरा पंथ का जो भी आचार्य होगा वो हमारा गुरु होगा और उसके जो सिद्धांत होंगे ना वही हमारे गुरु धारणा में कहिए या देव गुरु धर्म की श्रद्धा के अंदर वो मान्य होंगे। तो हम पुण्य की सबसे बड़ी बात जो पुण्य की क्या है कि भिक्षु स्वामी ने कहा कि ये पुण्य ना तो बाजार में मिलता है ना खरीदा जाता है, ठीक है ना, इसको हासिल करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है वो धर्म। जब आप धर्म करने बैठ जाते हो तो पुण्य आपको ऑटोमेटिकली बोनस के रूप के अंदर, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हम गेहूं की जो फसल बोते हैं तो गेहूं की फसल हम जब काटते हैं तो गेहूं के साथ में खाकला उसकी जो होती है ना, खाकला आप जो चूरी जो बोलते हैं ना वो खाकला बोलते हैं, हाँ भूसा, चूरी भूसा, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो उसके साथ रहता, उसके बिना गेहूं पैदा नहीं होता। हमने उस भूसे के लिए खेती नहीं की है, हमने खेती की है गेहूं के लिए खेती की है। ये तो हमें अनायास ही जो है, जिसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं आज की भाषा के अंदर, बोनस बोलते, ये हमको अनायास ही मिल गया। तो इसीलिए और हमारा सारा चिंतन जो है ना, जो गेहूं को जैसे उत्पादन करने के लिए था, तो हमारा सारी धर्म की क्रिया है वो निर्जरा के लिए होनी चाहिए, संवर के लिए होना चाहिए। भगवान ने दो ही धर्म बताए, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब त्याग प्रस्थान करना, हर संवर के साथ में निर्जरा होती ही है। निर्जरा दो तरह की होती है, सकाम और अकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा होती है वो हमारे संवर के साथ हर हालत में होती ही है, और अकाम निर्जरा जब जो है हमने पचकान नहीं किए, मतलब जो है संवर का मतलब त्याग पचकान करें जब संवर होता है, और जैसे समाई के अंदर हमने पचकान कर लिया, ठीक है ना, तो वो समाई होती है। अब हम धूप के अंदर खड़े हैं, किसी भी लाइन के अंदर, आधार कार्ड बनाने की लाइन है, रेलवे रिजर्वेशन की लाइन है, और कई तरह की बैंक की लाइन है, और हमें पसीना पसीना छूट रहा है, और हमें धूप सहनी करनी पड़ रही है, बिजली चली गई है, तो हम कई तरह के और समय पे भोजन नहीं कर पाए, वहाँ से निकल नहीं पाए, तो हमने जितने भी कष्ट सहन किए हैं ना, ये कष्ट सहने से भी निर्जरा होती है, पर वो अकाम निर्जरा है। जैसे कि पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, इनके कितनी सर्दी, इनके कहाँ पे बिस्तर है और कहाँ पे ओढ़ने को है, ये तो प्रकृति में खुले रहते हैं, तो इनके भी जो निर्जरा होती है, लेकिन वो पचकान कर नहीं सकते, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, तो उनके अकाम निर्जरा होती है, सहन करते हैं सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है ना, और धूप है, हाँ उनसे उनसे कर्म करते हैं ना निर्जरा से। ऐसा है हरेक एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक के जो है ना, परंतु क्योंकि उनके विकसित नहीं है इंद्रिया, परंतु अध्यवसाय बोलते हैं, अध्यवसाय हर प्राणी के होता है, एक इंद्रिय के भी अध्यवसाय होता है, उस अध्यवसाय से जो है वो जितना संवेदना होती है, जितना जैसे एक इंद्रिय स्पर्श, जैसे पेड़ पौधे एक इंद्रिय वाले हैं तो उनके स्पर्श तो होता ही है ना, गर्मी तो लगती है वो स्पर्श से वो महसूस करते हैं, उनके सर्दी लगती है वो स्पर्श से महसूस करते हैं, उनको कोई मतलब काटता है तो स्पर्श से महसूस करते हैं, संवेदना होती है, क्योंकि उनके एक ही इंद्रिय है। अपने तो अपन तो चिल्ला सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते ना, लेकिन वो भी सहन करते हैं, तो वो सारी उनके अकाम निर्जरा है। अब वो मतलब जब चार इंद्रिय तक क्या है कि उनका विकसित नहीं होने से ज्यादा कर्म नहीं बांध सकते और ज्यादा निर्जरा भी नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ क्यों माना गया है कि मनुष्य चाहे तो तो फास्ट स्पीड से जो है वो निर्जरा एक एक मिनट धर्म की प्रवृत्ति करे तो सकाम निर्जरा बहुत ज्यादा करके कर्मों को काट करके आत्मा को हल्का कर सकता है और जितनी जितनी आत्मा हल्की होती है मोक्ष के करीब पहुंचती है। और अगर वो बुरी प्रवृत्ति में मनुष्य चला जाए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे विलासिता भोग विलास हिंसा आर ध्यान रुद्र ध्यान उसके अंदर चला जाए ऐसे मार काट लूट आतंकवाद तो उसके अंदर चला जाए तो क्या होता है वो सातवीं नारकी तक भी मनुष्य ही जाता है दूसरा कोई प्राणी नहीं जाता क्योंकि उनके पास ऐसा साधन नहीं है इतनी बुराई करने का कुकर्म करने के साधन नहीं है उनकी इंद्रियां मन वचन का विकसित नहीं है। हम पूर्ण विकसित प्राणी हैं। अब हमारा विवेक के लिए हमारे लोगों के लिए क्या कहा है कि विवेके धम्मम आइए विवेक ही धर्म है। आपके पास मन वचन काया आपको मिले आपके शुभ नाम कर्म के उदय से तो आप उसका उपयोग कैसे करते हो और उपयोग करने में आप स्वतंत्र हो। हर प्राणी हर पंचेंद्रिय हर मनुष्य की बात करें उसका उपयोग करने में वो स्वतंत्र है। अब सदुपयोग करता है तो उसकी निर्जरा होती है दुरुपयोग करता है उसके कर्म बनते हैं। और एक बार हम जैसा बीज बो देते हैं तो उसका उसका फल हमको अच्छे या बुरे के रूप के अंदर मिलता है और वही कर्म कहलाता है। तो हम विष्णु स्वामी की पुण्य की बात कह रहे थे कि पुण्य का बंध जो है ना धार्मिक क्रिया के साथ में ऑटोमेटिकली मिलता है ये हमको पूरा चित्र से ध्यान रखना है। आज पुण्य का अर्थ जैसे आपने प्रश्न किया पुण्य का अर्थ उदय में आने से क्या होता है अच्छा परिवार अच्छा घर अच्छी प्रतिष्ठा अच्छा पद अच्छा धन अच्छा शरीर सब चीज अच्छी मिलती है। जब तक पुण्योदय है और पापोदय आ जाता है तो इसका उल्टा होता है दुख है बीमारी है लड़ाई है झगड़ा है जो है कलह है अरूप है पत्नी कक्षा मिल जाती है लड़ाई झगड़ा करती है रोज कोई बेटा ऐसा आ जाता है बेटे की बहू आ जाती है तो ये सारी पाप की प्रवृत्ति ये पुण्य पाप के उदय के बाद के में मिलते हैं उदय से मिलते हैं। लेकिन ये पुण्य जो है ना हमारे धर्म की करनी करने से ही मिलता है ये बात समझने की है। लेकिन हमारे कुछ दूसरे तरह के जैन धर्म है के लोग हैं आचार्य हैं दिगंबर समाज को मानता ही है स्थानकवासी में और मूर्ति पूजक में और भी कई आचार्य हैं जो पुण्य का स्वतंत्र बंध मानते हैं। वो क्या कहते हैं मंदिर बनाओ पुण्य होगा दिगंबर और मूर्ति पूजक कहते हैं अपने यहाँ मंदिर बनाओ तो अपन तो उसको सावध्य प्रवृत्ति मानते हैं ठीक है ना। अच्छा दूसरा वो कहते हैं कि गरीब आदमी है भूखा है प्यासा है पशु है पक्षी है उनको चुग्गा दाना भोजन जो देना है ना उससे पुण्य का बंध होता है। ये बात समझने की हमारा प्रिंसिपल हमारा सिद्धांत नहीं है। इसीलिए क्या है कि हम तो उससे मुक्त है इसीलिए विष्णु स्वामी ने सिद्धांत के आधार पर जो दान दया की बात कही ठीक है ना। विष्णु स्वामी ने किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने कहा दृष्टि हो ठीक है ना। तो आप तो 24 घंटे आपके कोई साधु तो बने नहीं है दृष्टि में रहते हो तो आपको सावधि प्रवृत्ति होती है यानी आपका लौकिक धर्म क्या बोला उसको लौकिक लौकिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार लौकिक व्यवहार में क्या होता है माँ बाप की सेवा करनी होती है बच्चों का भी रहता है कोई मेहमान आवे उसको भोजन कराना होता है और हम जिस जगह रहते हैं वहाँ जो है वो कुत्तिया को रोटी देना है या जो है वो किसी को पानी पिलाना वो लौकिक वो हमारा लौकिक व्यवहार है वो हमारा शिष्टाचार है उससे पुण्य का बन के कोई लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है। हम क्या है कि दूसरों को देख देख के हमारी मान्यता बना लें जैसा दूसरे लोग कहते हैं कि पुण्य का बंध होता है हम भी कहने लग जाएं तो हमारी विष्णु स्वामी की मर्यादा से जो है हम विमुख हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कभी भी हमारी जो है ना पुण्य बंध का स्वतंत्र बंध नहीं होता है केवल धार्मिक क्रिया। इसीलिए हमारे यहाँ पुण्य पुण्य की बात नहीं कही जाती है पुण्य का जब कभी विवरण होता है ना तब पुण्य की बात जरूर कहते हैं भाई ये पुण्यवानी है पुण्योदय है इतना जरूर कहते हैं। पर हमारे जो साधु साध्वियाँ आचार्य जो कहते हैं वो निर्जरा धर्म की बात करते हैं कि तुम संवर करो निर्जरा करो और दिगंबर समाज के और मूर्ति पूजक समाज के आप प्रवचन सुनो उसके अंदर निर्जरा की बात बहुत कम आती है। वो निर्जरा को मानते हैं लेकिन वो पुण्य की बात कहते हैं, मंदिर बताओ पुण्य होगा, ये जो है वो स्थापना करो, ये उसका जो है वैसे करो, जो जो उनकी विधियां हैं उस विद्या के अंदर वो हर बार पुण्य के रूप में प्रेरित करते हैं, हर चीज का पुण्य से जोड़ते हैं उसको। तो ये हमारा बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो दान की परिभाषा जो है ना, भिक्षु स्वामी ने शुद्ध दान की परिभाषा दी। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा जो लौकिक व्यवहार है ना उसको हम बीच में, भिक्षु स्वामी कहते हैं दोनों को अलग अलग रखो। उन्होंने उदाहरण दे के बताया है कि एक जो है ना एक व्यापारी है, जैसे कि व्यापारी के मान लो जो घी की भी रखता है वो और उसके साथ में जर्दा भी रखता है और दोनों जो है उसका एक ही भाव है, तो उसको घी और जर्दे का एक भाव होके मिलाना नहीं है और लोगों को उस भाव के चीज से जो है दे दिया जाए। वो कह रहे दोनों चीजों मिक्स मत करो, दोनों को अलग अलग रखो, ठीक है ना, क्योंकि आप लौकिक में भी रहते हो परंपरा में और धार्मिक परंपरा में भी रहते हो। हम व्रताव्रती हैं, हमने जब समाई की धर्म की क्रिया की तो व्रत में आ गए और जब खुले हो गए तो हम अव्रत हो गए। इसलिए क्या हमको दोनों में रहना पड़ता है, तो दोनों में रहना, तो हम गलती क्या करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं आपको, तो हर बार कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मिलाना नहीं है, धर्म को बिल्कुल अलग रखो, लौकिक को अलग रखो। तो वो कहे माँ बाप की सेवा करना धर्म कहते नहीं है। अरे भाई वो यीशु स्वामी ने इसके बारे में तो यही कहा कि तुम्हारा लौकिक में तो तुम कई चीजें करते हो, बहुत सी चीजें करते हो, कौन कौन सी चीज बता रहे हैं। हम तो क्या है कि स्वामी का हम आपको तो प्योर धर्म की परिभाषा देते हैं, प्योर धर्म बताते हैं। प्योर धर्म वो है जो भगवान महावीर ने, उनके सामने आदर्श था भगवान महावीर। उन्होंने कहा हे प्रभु, जो है आपकी वाणी है वही मेरे लिए सिरोधार्य है, उसके अलावा जो सब विलाप है, दूसरी बातें हैं कोई करता है करता है, वो विलाप है, मेरे काम की चीज नहीं है और मुझे उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। मुझे तो आपकी जो वाणी है उसमें ही श्रद्धा है, उसमें विश्वास है। भगवान की वाणी जो है वो संवर निद्रा की वाणी है, सबके 12 भेद है, वही सारा संवर है, वही सारा निर्जरा है, ये जुड़े हुए। इसलिए संवर निर्जरा दो बड़े धर्म बताए गए हैं। तो इसलिए क्या है कि ये हमको ध्यान रखने का, अच्छा दान और दया की बात है, उसके अंदर क्या है लौकिक लोकोत्तर की बात। अच्छा लौकिक का लोकोत्तर, लोकोत्तर का मतलब क्या है कि तरना, आत्मा का उत्थान करना, ये धर्म और जो है पारलोक परलोक लोकोत्तर और धर्म एक ही पाड़ा है, ठीक है ना। और लौकिक जो है ना वो हमारा सारा संसार का धर्म है, लौकिक लोकोत्तर, और लोकोत्तर को पारलोक पारलौकिक भी कहते हैं। ये सारा धर्म से जुड़ा हुआ, जो आत्मा से जुड़ी हुई चीज है वही परलोक है और वही जो है हमारा जो है धर्म है बात। और जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी संसार से है, शरीर जड़ है, इसलिए संसार की सारी क्रियाएं जो है, क्योंकि हम शरीर के अंदर जड़ भी है और आत्मा भी है, दोनों ही है। तो इसीलिए जो हम जड़ के लिए प्योरली इसके लिए करते हैं, जड़ चलता है आत्मा से, आत्मा नहीं हो जड़ कहां से चलेगा, लेकिन शरीर जड़ है, इसके लिए जो हम काम करते हैं वो सारा हमारा लौकिक जगत है। और हम आत्मा के लिए बात करते हैं यानी धर्म की बात करते हैं, वो हमारा सब पारलौकिक जगत है, वो हमारी अगली करनी जो है ना उसके साथ में जुड़ता है। तो इसीलिए हमें ये बताया गया कि ज्यादा समय धर्म की साधना करो, ताकि आपको जो है धर्म के साथ में पुण्य मिलेगा, शांति मिलेगी, आत्मा उज्ज्वल होगी, आपकी अच्छी गति होगी और धीरे धीरे मोक्ष भी हो जाएगा। तो सारी चीजें ये मतलब, अच्छा अब हमारे यहाँ दान की बात कही गई है, तो अभी जैसे अपन ने बात कही थी कि अपने चिड़ी को चुग्गा देना, भूखे को भोजन खिलाना, ये हमारा क्या है लौकिक व्यवहार है, हमारी मान्यता नहीं है। हम दान किसको उन्होंने दान की कही है, तीन तरह के शुद्ध दान बताए, वो कौन से, पहला शुद्ध दान है संयति दान। हमारे जो साधु साधियां हैं ये 5 महाव्रतधारी है, ये पूर्ण अहिंसक है, हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, अनुमोदन नहीं करते, मन से नहीं करते, वचन से नहीं करते, काया से नहीं करते। इन्होंने जीवन भर नवकोटिक जो है वो हिंसा के त्याग कर रखे हैं, इसलिए पूर्ण अहिंसक है। इनको जो कुछ भी हम देते हैं वह भी पुण्य की कैटेगरी में आता है, वो भी धर्म है। साधु संतों के लिए जो करते हैं वो सब धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य है। जैसे अपन नौ तरह पुण्य है ना, अन्न पुण्य है किसके लिए? साधुओं के लिए, गृहस्थियों के लिए नहीं। माँ बाप को आप ये मत मान लेना कि माँ बाप को अन्न किया पानी दिया वो तो लौकिक खाते में, वो आपका व्यवहार है। क्यों आप व्यवहार में जी रहे हो, आप इस खाते में भी हो, इस शरीर के खाते में हो, वो भी आपको निभाना पड़ेगा। इसीलिए तो छूट मिली है ना, अपने अनुग्रह मतलब हमें जो स्थूल हिंसा नहीं करनी। हमको भगवान ने छूट क्यों दी कि ये गृहस्थी है, ये सूक्ष्म हिंसा नहीं जो है वो सूक्ष्म हिंसा से वो नहीं, वो उनको रह नहीं सकती, करनी पड़ती। सूक्ष्म हिंसा को वो टाल नहीं सकते, उसके बच नहीं सकते, इसीलिए तो छूट दी है। तो इसीलिए जो है वो हमें अपना जो जैसे हम बात करें अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, अच्छा दूसरा क्या है, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार, नौ तरह के जो पुण्य है ना, ये साधु साधियों के लिए है। उनको स्थान देना, बाजोड़ देना, उनको नमस्कार करना, ठीक है ना, उनको भोजन देना, पानी देना, ये सब धर्म की कैटेगरी है। साधुओं के लिए सारा धर्म की, इसीलिए तो कहते हैं कि साधु संतों की खूब सेवा करो, वो सारा हमारे धर्म के खाते के अंदर जाता है। वो एक तरीके से धर्म है, जितना समाई करने से धर्म होता है, साधु संतों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करने, वो धर्म के खाते में जो नियम है उसके अनु उनके लिए नहीं बना रहे, ठीक है ना। साधु संतों के लिए कुछ नहीं करना है, उसके अंदर की उसमें क्या है कि हम भी जो है वो भागी बन जाएंगे, हम दोष के भागी हो जाएंगे। वो भी लेते हैं तो वो भी उनके लिए बनाया हुआ भोजन है, वो जो है प्राशुक नहीं है, तो वो उनके लिए कल्पनीय नहीं है, कल्पता नहीं है, उनको लेना भी नहीं चाहिए। और अपन झूठ बना करके बहराते हैं तो वो अपने भी पाप लगता है। अपनी उणोतरी करके हम जो पांच दस सदस्य घर के अंदर कि भाई आधा आधा रोटी हम कम खाएंगे, थोड़ी थोड़ी सब्जी कम खाएंगे, यूं करके जो बचा है वो शुद्ध जो है दान है, ठीक है ना। ये संयति दान, ठीक है ना। एक होता है ज्ञान दान। ज्ञान कौन सा? आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान की पुस्तकें बांटना। जैसे हम आपको आत्मज्ञान दे रहे हैं इतने दिन से, साधु संत देते हैं, कोई व्यक्ति जो बुराई कर रहा है उसको समझाया जाए कि भाई क्यों कर्मों का खाता बांधता है, और उसको जो है धर्म के रास्ते पे लाना। अधर्म पे जा रहा है उसको धर्म के रास्ते पर लाते हैं ना, वो जो है सारा वो ज्ञान दान है। जैसे कि साधु संत हमको प्रवचन देकर के सम्यक्ति बनाते हैं, समकित देते हैं, सम्यक दर्शन देते हैं, ताकि हमारी मोक्ष की नींव लगे। उन वो किस लिए हमारे पे इतनी गुरुदेव मेहनत करते हैं कि मेरे श्रावक है सभी मोक्ष जाएं, सबके मोक्ष की नींव लगे, इसीलिए वो प्रयास करते हैं। हमको अच्छा देख के, हमको करोड़पति देख करके नहीं करते हैं, वो करुणा उनके मन में जो साधु संत होते हैं करुणा होती, करुणा का बहुत आगे आएगा चैप्टर, उनके मन के अंदर ही करुणा है। ये तिन्नानम तारियानम बोलते हैं साधुओं को कि स्वयं तरो और दूसरों को तारो, ये इनकी ड्यूटी है। इन्होंने जो ये साधना लिया है अपनी आत्मा की कल्याण के लिए, लेकिन अभी उनके शरीर है वो समाज में जी रहे हैं, समाज से भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, और भी कई चीज़ें लेते हैं, स्थान लेते हैं। तो उनका कर्तव्य है कि इनको कुछ ज्ञान दे, ठीक है ना, आत्मा का ज्ञान दे उनको, ज्ञान बना करावे, ठीक है ना, और उसके जैन धर्म के सिद्धांत बतावे, क्या धर्म अधर्म की बात बतावे, नौ तत्व बतावे, षट जीव निकाय बतावे, हमारी मान्यता बतावे, सब चीज उसको एक जैन विद्वान बनावे, ठीक है ना, और उसको धर्म में प्रवृत्त करे, उसको धर्म के अंदर मन लग जावे, ऐसा बनावे। तो ये जो है सारा है वो कहलाता है हमारा ज्ञान दान, संयति दान, ज्ञान दान, और तीसरा अभय दान, जिसने हमारे उपासक जी ने कितनी बड़ी प्रेरणा दी, कितना अच्छे से बताया। शत नीर जीव निकाय, हम गृहस्थी हैं, जितनी हमको आवश्यकता है, 5 किलो पानी चाहिए, 10 किलो चाहिए, अग्नि की कितनी आवश्यकता, मकान की कितनी आवश्यकता, साड़ियों की कितनी आवश्यकता, जितनी जितनी आवश्यकता को छोड़ करके 14 नियम सच्ची दब दिगई पन्नी तंबोल का वतन उसमें सु वाण पैंट विलेवन बम बंदी नाण भत्ते सु, इसके अंदर 14 नियमों के अनुसार त्याग करें। हमको जो आवश्यक नहीं है उसकी चीजों का, वो हम खुले रहते हैं तो सब चीजों का हमको पाप लगता है। तो हम क्या है कि प्रत्याख्यान करने से बंद जाते हैं, तो हमारी इतनी आवश्यकता इतनी ज्यादा लगता नहीं है, और वो भी थोड़ा हो तो थोड़ी सी आवश्यकता से बढ़ा के प्रत्याख्यान करो। रोज आप 15 दर ले तो 21 का कर दो, ठीक है ना, पर 21 में तो कहीं से शांति करो। साड़ियां तो 10 पहनते हो, 15 का ले लो, साल में 21 का ले लो, पर अब उसका वो उसका तो एंड क्या, जब आप ले ही नहीं। जयललिता 100 साड़ी रखती थी, 100 जो है वो चप्पल रखती थी, तो अब उसका तो क्या अंत है। तो इस तरीके
हजारों साड़ी,
हाँ, तो इसीलिए क्या उसका अंत क्या है, तो उसका क्या अंत है, और कोई मतलब ही नहीं वो हाँ, तो वो क्या किसी का शोषण है, हम किसी का हक मार रहे हैं। देखिए हमारी आवश्यकता से अधिक रखते हैं तो निश्चित रूप से किसी का हम हक मार रहे हैं, वो हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वहाँ पाप है। तो यही तो समझ है कि हिंसा, जितनी जितनी हिंसा उतना उतना पाप, जितनी जितनी अहिंसा उतना उतना धर्म, जितना जितना विवेक उतना उतना धर्म है। ऐसा मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक उदाहरण देता हूं। ऐसा है कि हमारा सारा जो कर्मों का संबंध है ना, वो आसक्ति से जुड़ा हुआ है। आसक्ति, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जो है ना, किसी के मान लो कपड़े की फैक्ट्री है, बॉयलर होता है ना कपड़े में, बॉयलर, एक बॉयलर चलाने वाला है नंबर वन। दूसरा मुनी में है जो कि गांठें बांधता है, उसका हिसाब रखता है, और तीसरा सेठ है। अब तीनों का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब देखिए कि जो बॉयलर चलाने वाले से चलता हूं मैं, बॉयलर वाला लकड़ियां डाल रहा है, परंतु वो आदमी समझता है धर्म अधर्म को, वो मन में ग्लानी करता है, अरे हाय मैं कैसा काम कर रहा हूं, जीवों की हिंसा कर रहा हूं, हे ईश्वर मेरे को, उसमें उसको घृणा होती है, उसमें उसके अंदर उसके तो प्रायश्चित होता है। तो देखिए उसके कर्मों का बंधन सबसे कम है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा है मुनिम जी है, मुनि, अब वो देखिए वो हिंसा कर रहा है, लेकिन भाव, द्रव्य और भाव दो पक्ष को मानो, वो भाव क्या करता है, हाय हिंसा कर रहा है, लेकिन उसके भाव है मैं कब छूटूं, कब जाऊं, मजबूरी है, ग्रस्त हूं, दूसरा धंधा मिल नहीं रहा है, यही कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ठीक है ना। वो ऐसा दिखते जीवों को तो वो अंदर नहीं डाल रहा है, पर अब होते हैं तो कहां मालूम पड़ते हैं, पर अग्नि का जीव है। अब दूसरा मुनीम, मुनीम क्या है, क्या करता है, सिर्फ गांठे बांधता है, और गांठे बांधने के साथ साथ में वो हिसाब किताब रखता है। तो वो मुनीम ये सोचता है कि देखिए गांठे ज्यादा हुए तो मेरे को बोनस देंगे सेठ जी, ठीक है ना, और मेरे को तरक्की करेंगे और मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये काम धंधा तो अच्छा है, ठीक है ना, और ये इनका काम बढ़ना चाहिए, इनका तेज ये काम बढ़ना चाहिए, तो मेरे भी क्या थोड़ी आवक ज्यादा होगी, ठीक है ना। वो यहीं तक करता है, मतलब वो छोटी सी उसकी डिमांड है कि भाई मेरी तनख्वाह 10,000 है तो 12,000 कर देंगे, उसकी डिमांड छोटी सी पर है तो सही ना, ठीक है ना। तो जो बॉयलर वाले के कर्म बन रहे थे उससे ज्यादा कर्म मुनीम जी के। अब आप सेठ जी पे आइए, सेठ जी तो घर में सोते रहते हैं, न तो बॉयलर पे जाते हैं और न तो एसी में सो रहे हैं, अच्छा न मुनीम को पूछते हैं, वो तो शाम को स्टेटमेंट आया देख लेते हैं भाई कितनी घाटे गई क्या भी। अब वो सेठ जी क्या कह रहे हैं, अरे भाई मेरे बैंक बैलेंस कितना है, 10 लाख, 50 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, जल्दी से जल्दी अरबपति बनना है, फैक्ट्री में एक्सपांशन कर दो, इतने बॉयलर ज्यादा लगा दो, इतने जिगर ज्यादा लगा दो, इतना ये कर दो, ठीक है ना, वो तो निर्देश ही देते हैं, या कोई आता है पूछने मुनीम के तो कर दो कर दो, अनुमोदना करता है ना। सबसे ज्यादा पाप किसको हो रहा है? सेठ जी को। सेठ जी कौन चिंता, वो तो फैक्ट्री नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं जाते। आसक्ति, आसक्ति किसके ज्यादा है? सेठ जी के। तो सबसे कर्मों का बंधन सेठ जी के ज्यादा है। घर के अंदर जो जो देखिए हमारे, हम खुद करते हैं ना, हिंसा वो हिंसा ही है, ठीक है ना। हिंसा दो तरह की होती है, तो द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। महत्व सबसे, अगर मान लो आपको बड़ा शासक बनना है, जल्दी मोक्ष जाना है, तो आप भाव पक्ष को मजबूत करो। भाव पक्ष को मजबूत किए बिना छलांग नहीं है। अगर कोई ये देखे कि नहीं मेरे को तो छलांग लगानी है जल्दी, भाव कम करने, चाहे चाहे शावक हो चाहे साधु हो, उसको भाव पक्ष में जाना चाहिए। भाव पक्ष क्या है कि अंदर के जो विचार है ना हमारी, मान लो कीड़ी मर गई, मिथ्या में दुर्गम कर दिया अपन ने, प्रायश्चित कर दिया, लेकिन भीतर क्या चल रहा है वो सोचो। वो भीतर कितना कर्मों का बंधन का मोटा कारखाना वहां है, मेरे ऐसा होना चाहिए, मेरे ऐसा होना चाहिए, मेरे बेटा होना चाहिए, पोता होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये 24 घंटे वो लालसा का मीटर भीतर चल रहा है। तो वो हिंसा ज्यादा कराता है। ज्यादा हिंसा भावों से होती है, द्रव्य तो बहुत कम है। द्रव्य की तुलना भाव ज्यादा, उसका रिवर्स समझे। मिथ्या में दुख लो, मिथ्या में दुख लो, मैं जल्दी से 50 साल की हो जाऊं, 60 साल की हूँ, सब छोड़ दूं, धर्म ज्ञान करूं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि अपना किया, पट किताब लेके बैठ गए, समाइक लेके बैठ गए, मौन कर लिया, उपवास कर लिया। जीव जो है धर्म में ही रहे, वो भाव है, और भीतर रहना चाहिए। और देखिए सबसे ऊंचा भाव क्या है, सबसे ऊंचा भाव आत्मा का चिंतन करना, ठीक है ना, कि आत्मा क्या है, ठीक है ना। ये आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अपनी पहचान करना, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का धाम हूं, मुझे जल्दी मोक्ष जाना है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मेरे में कोई कमी नहीं, भगवान महावीर जैसी शुद्ध आत्मा हूं। और सब जो सबकी आत्मा है, सब मोक्ष जा सकती है, सब में एक ही योग्यता है। उसका जितना शुद्ध आत्मा का हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। और दूसरा क्या है, जब कभी भी कोई काम हो, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे शक्ति दो। शक्ति वो देता है, मंदिर में जाओगे तो भी भगवान यही आता है, महाश्रवण जी के जाओगे, महाश्रवण जी एक आलंबन है, हम आपको बता रहे हैं एक आलंबन है। मरे बिना स्वर्ग नहीं है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ और कहता हूँ मैं जीता जीता स्वर्ग जाऊँ तो कैसे जाऊँगा। तो इसीलिए आपको अपने जो सबसे बड़ा गुरु है ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन क्या कहती है, अपने आप को पहचानो। और भगवान महावीर ने कहा था, अपना सज में सेजा मैटिंग हुए तो कप है, मेरे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा, मेरे आगम से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम स्वयं सत्य खोजो। सत्य क्या है, मैं शुद्ध आत्मा हूं जैसा मैंने स्मरण किया है, और उसके ऊपर जो बुराई है, उसके ऊपर जो कर्मों का खाता है ना, उसको देखो, कर्मों की प्रेक्षा करो। कि जैसे अपन हिसाब किताब रखते हैं ना, कि 10,000 हुए, 20,000 हुए, 50,000 हुए, इसका लेना इसका देना, तो अपना कर्मों का हिसाब रखो कि इतने कर्म, ये बंदे ये झूठे, ऐसे बनते हैं ऐसे गए, उसकी कैलकुलेशन में खोए रहे हैं अपन, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो अपने आत्मा को पहचानने का है। तो ये हम जितना आत्मा का चिंतन करते हैं, ये सबसे उच्च शुद्ध भाव है, और बाकी धर्म की जितनी भाव है ये भी अच्छे भाव है, पर सबसे ऊंचा भाव है स्वयं की आत्मा का चिंतन, आत्मा के गुणों का चिंतन, और उस आत्मा का आपका मन वचन कायम, उसे आत्मा से बात करो। जो आपका अंदर सोचता है ना, वो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध का मतलब बंधी हुई कर्म है, लेकिन उससे आपका मन वचन का है जो कर रहे हैं ना, उससे उसकी आपके बीच में संवाद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन वचन काया से आपके भीतर जो शुद्ध आत्मा विराजमान है, उनका आपस में संपर्क होना चाहिए। उनकी जैसे अपन बात कर रहे हैं, उनकी हर वक्त बात होनी चाहिए। भाई क्या कर, आपका नाम क्या है? हैं?
निर्मला।
निर्मला, तो वो शुद्ध आत्मा व निर्मला क्या कर रही हो, तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, तुम्हारा वचन कहाँ जा रहा है, तुम्हारी काया कहाँ जा रही है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो जो है मेरे चिंतन में लगो ना, मैं जो बताऊं वैसा करो ना, धर्म की प्रवृत्ति में लग जाओ ना। वो भीतर आपने देखा होगा कभी भीतर में हमारे आनंद की अनुभूति होती है, वो आत्मा की अनुभूति है, भीतर में आता है जल्दी जल्दी समाई करें, ये काम धर्म का काम पहले करें, वो सारा वो करा। ऐसा है दूसरी बात यहाँ आने दो, जो आपके मन में ध्यान करते हो ऐसा नहीं आए मत, यही गलती यहाँ हो रही है, आप जो कह रहे हो ना नहीं आए ऐसा मत सोचो, उसको कहो कि और आ, उसको छुट्टी दो, जितना आप बांधोगे ना विचारों को, ये क्या है कि ज्यादा आएंगे, विचारों को खुला करो, आप करके देखो, आप ये मत को नहीं आए नहीं आए नहीं आए, पकड़ो मत उसको, उसको को और आ। नहीं वो तो ऐसा डोर बजती है तो वो तो अपने सुनाई देती है, वो तो सुनाई देती है, वो तो जाना ही है, वो तो ऐसा है, उसको पकड़ के मत रखो, जो ध्यान करना चाहते हैं विचारों को पकड़ना नहीं है, ठीक है ना, विचारों को पकड़ना नहीं, विचारों को खुला छोड़ दो। मैंने उदाहरण दिया ना कि जो पतंग हम उड़ाते हैं ना तो डोर हमारे हाथ में होती है और पतंग मांगती है ढील दो तो हम देते हैं नहीं, और उसको पकड़ के रखेंगे तो पतंग कहाँ जाएगी, आगे जाएगी नहीं, विचार पतंग की तरह है और आप डोर हो, उसको खुला छोड़ दो। जो ध्यान करना चाहते हैं विचारों को कभी बांधो मत, ये मत कहो कि ये नहीं आना चाहिए आना चाहिए, उसको कहो कि और आ भाई, तो क्या होगा धीरे धीरे आपके फूटे बन जाएंगे, एक भी विचार नहीं आएगा, जितना जितना कहो ये नहीं आना, अरे ये कैसे आ गया, अरे ये कैसे आ गया, ये खराब आ गया, क्यों आ गया, उसको कहो भाई तू तेरे जचे जो आ जा, तो वो क्या है जब छूट दोगे तो नहीं आएगा, बांधोगे तो आएगा, करके देखो। ऐसा है ना, आप क्या कह, अरे ये क्यों आया, अरे ये कैसे विचार आया, ये ऐसे कैसे आया, उसकी उपेक्षा कर दो, उसकी उपेक्षा कर दो, तो उपेक्षा करते करते क्या वो आएगा ही नहीं, वो देखेंगे कि यहाँ कोई दाल तो गलने वाली है नहीं, हमारी मानते नहीं है, तो जाओ। अब क्या होता, देखिए अपना भिखारी घर आता है ना तो क्या बार बार जोर से आवाज लगाता है, भाई दे भाई दे भाई दे, कितनी बार लगाता और भाई ढूंढा ही नहीं, भाई तो अपने काम में चली रहती है, तो क्या होता भिखारी जाता है कि नहीं जाता है, तो वहीं खड़ा रहता है, अपन उसकी उपेक्षा है, ठीक है ना, उपेक्षा का अपना आप चला जाएगा। और जो है अपन क्या है उसको बोलेंगे सुबह सुबह आ गियो मांगने, कोई दूजो काम को नहीं, तो वो क्या दो और सुनाएगा, भाई तेरे घर में कुछ है ही नहीं, भिखारी को ऐसे बोलती, आप बोलो वो चार सुनाएगा, तो ऐसा क्यों झंझट बोल देना, तो उपेक्षा करो, विचारों को बांधोगे ज्यादा है, विचारों को खुला छोड़ोगे तो वो आपके फूटे बन जाएंगे, ये सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है कि बहुत ऊंची साधना करना चाहते तो श्वास की संख्या को, श्वास को लंबा लेना सीखो, तो क्या है कि विचार विचार ये है ना, सबके मोक्ष में जाना है तो श्वास पे ध्यान दो, श्वास की जो प्रक्रिया है ना उसको क्या है प्रैक्टिस करो, मतलब कोई जोर से नहीं करना है, अपने घड़ी लेके बैठो एक लक्ष्य के साथ के अंदर कि श्वास थोड़ा लंबा हो जाए, घड़ी से देखो अब कितने हुए, नॉर्मली आदमी टेंशन फ्री होता 16 लेता है, तो अब उसको थोड़ा अभ्यास किया तो ये 16 से कम हो गए, आई तो 14 हो गए 15 हो गए, फिर क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो 14 ही आए नॉर्मली, मतलब जितना श्वास हम लंबा लेंगे उतना ही लंबा छोड़ेंगे, श्वास की संख्या घटेगी तो ना तो मोह आएगा ना क्रोध आएगा और ना लालसा सताएगी ना विचार सताएगा, ये तो ये सबसे बड़ा रामबाण ये है कर सके। अरे पूरा सब चीज का संबंध सांस के साथ करके देखो, महाप्रभु जी ने तो इसके ऊपर पूरी पूरा प्रेक्षा ध्यान की जो है ना पूरी नींव इसके ऊपर टिकी हुई है, क्रोध अहंकार माया लोभ दुर्विषण लालसा सब खत्म हो जाएंगे। आप इसको लंबा सांस किया नहीं, इसका कारण है कि जब हम लंबा सांस करते हैं ना, छोटे सांस के अंदर ये सब चीजें बढ़ती है, तनाव क्या वो, और लंबा सांस होता है ना, ये सब चीजें घटती है, अपने आप घट जाती है, वैराग्य आता है। ये ऐसा है, ये बड़े बड़े साधु संत हैं, गुरुदेव हैं वगैरह, ये क्या करते हैं, ये अपने सांस को लंबा लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ये तो अभी परीक्षा ध्यान में ये तो फाइनल हो गया कि लंबे सांस वाले के बीमारी भी कम आती है, सब रामबाण है। कोई क्या नहीं, मेरे को तो लंबा चौड़ा सीधा सीधा बताओ, तो आचार्य महाप्रदीप जी ने सीधा सीधा बता दिया कि तुम भाई थोड़ा से 12 कर दे, 10 कर दे, पर वो ऐसा है कि अभ्यास करे, जब अभ्यास करे ऑटोमेटिकली धर्म में जीव लग जाएगा, मन है वो संसार की तरफ ज्यादा जाएगा ही नहीं, मन की तरफ ज्यादा जाएगा, भाई तुम्हारे जाना तुम तुम्हारे जाओ, मैं तो मेरे समाई करो, मैं तो मेरी किताब पढ़ू, मैं तो मेरे ध्यान करूँ, मैं तो मेरे माला फेरू, ऐसे तुम्हारे घूमना तुम जाओ, मैं तो कोई मना करता नहीं। इसीलिए ये सब चीजों का संबंध है जी, ऐसा है कि हमारा मोक्ष भीतर ही, मोक्ष भीतर, ये जो ये भगवान का मंदिर है इसके अंदर जो ऐसा है, आप सबसे बड़ी बात है इसके भीतर हम वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। इसके भीतर परम पिता परमेश्वर प्रभु विराजमान, हमारी शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, उससे मांगो ना, हम मांगते नहीं, हम उनसे बात ही नहीं करते, और वही सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ा भाव पक्ष है, सबसे बड़ा कल्याण उसमें। कोई बात हो भीतर, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मेरा जो है वो सारा कष्ट क्लेश दूर करूं, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मेरा उसे लड़ाई झगड़ा हो गया, आप मैं उसकी शुद्ध आत्मा का स्मरण करके उसे क्षमा याचना करता हूं, मुझे क्षमा करे, तो आपकी क्षमा पहुंच गई। क्योंकि आत्मा से आत्मा का संप्रेषण होता है, ये इसको आत्माओं को अव्यवाद कहते हैं, आपकी आत्मा जो है ना वो बुरा काम नहीं करती, मेरी आत्मा बुरा काम नहीं, आपने आत्मा से मेरी आत्मा को स्पर्श कराया तो आपकी आवाज वहां पहुंच गई। भगवान के पास कहते हैं ना कि शुद्ध हृदय से शुद्ध विचारों से प्रार्थना करो, ईश्वर तक पहुंचती। हाँ, तो ईश्वर ये भीतर बैठा है, यही तो बात है ना, उसको पहचानेंगे वही मोक्ष है। क्या
सूर्य चंद्र स्वर?
हाँ, ऐसा है कि ये जो हमारा जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट का ये चंद्र स्वर है, ये ठंडा रहता है, ठीक है ना। जब हमारे शरीर में गर्मी हो या क्रोध आ गया हो तो इसको बंद करके, इसको बंद करना, राइट को बंद करो और लेफ्ट से आराम से, और इधर से ही छोड़ो, जो हम थोड़ी देर करेंगे तो हमारे शरीर में ठंडक महसूस होगी, कैसी भी गर्मी हो क्रोध में ठंडक महसूस होगी और शरीर में ठंडक महसूस होगी, और ये हमारी सूर्य नाड़ी, इसको बंद किया, अब ठंडक ठंड लग रही है तो इससे है ना जोर से लिया, इसी से छोड़ा, ये गर्मी की है। तो ये सूर्य नाड़ी अगर किसी के ठंड ज्यादा लग, जैसे मेरे को ठंड ज्यादा लगती है, तो कई बार बहुत ज्यादा ठंड होती है तो इससे मैं करता रहता हूं, तो थोड़ी देर के बाद में गर्मी आती है, इससे गर्मी आती है, तो सूर्य नाड़ी और ठंड नाड़ी, ठीक है ना, ये दोनों नाड़ियां हैं। अच्छा, ये दोनों स्वर भी है, और इसका पूरा स्वर विज्ञान है कि कौन सा स्वर चलता है, तो उसे सुगर निकालते हैं, वो विद्या मुझे इतनी ध्यान नहीं है। और दूसरा अनुलोम विलोम भी होता है, इधर से लिया इधर से निकाला, इधर से लिया इधर से निकाला, उससे भी अच्छा होता है। मतलब हमारा शरीर है ना, ये बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। अब आपको कार्यक्रम चला रहा है ना, आगे बंद करो, अभी अभी तो अपने वो अर्थ बनना भी कर दो, अभी दूसरा, हाँ तो है तो बात।